बिजनेस ऑफ स्टेट, तो इंडिया जो है वो कहते हैं जी उसके ऊपर अभी भी वो मानता है और उस पर चलना चाहता है. इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है जी, उसने आज सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से ना कर दी है. और उन्होंने जो रूलिंग अपनी दी है, वो बहुत सारी हियरिंग्स जो ये सुन रहे थे अप्रैल मई से, तो उसमें आज थ्री ऑफ फाइव जजेस जो थे, यानी कि 3-2 की रेशो थी, 5 जजेस में से 3 ने कहा कि इसको लीगलाइज नहीं करना चाहिए, 2 ने कहा करना चाहिए. इसके ऊपर बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड जो हैं, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट जो है उसका काम सिर्फ जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन पॉलिसी बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम होता है, वो लेजिस्लेट करेंगे. हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क दे सकते हैं. हां, लेकिन हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि अगर कोई एलजीबीटी है तो उसको लीगल प्रोटेक्शंस होनी चाहिए, उसको बेनिफिट्स होने चाहिए, उसको सर्विसेज देनी चाहिए, और उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट इसलिए नहीं होने चाहिए कि वो एलजीबीटी है. वो कहते हैं जी हिंदुस्तान का जो संविधान है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे बिलीव करता है, और वो लोग जो कि डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं ये गलत है अकॉर्डिंग टू लॉ, उनको भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है. और एक हॉटलाइंस जो है वो बनाने की जरूरत है कि अगर वो डिस्ट्रेस में हो तो वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं, उनके लिए सेफ होम्स होने चाहिए. मेडिकल जो है प्रोसीजर्स के बारे में आज कोर्ट ने कहा कि हम जो है उसको बिल्कुल सही नहीं समझते हैं, क्योंकि लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी अगर ऐसे चेंज करें, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट इसके ऊपर डिसाइड करेगी. इससे पहले जो है बीजेपी ने अपोज किया था जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, और उन्होंने कहा था जी कि ये इशू पार्लियामेंट को हल करने का है. तो चीफ जस्टिस ने आज जो इंडिया के वो भी उन्होंने भी यही कहा. केविन स्पेसी साहब 64 ईयर्स उनकी माशाल्लाह एज है, मगर बड़े हेल एंड हॉटी हैं. आपको पता ही है बहुत लंबी इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट के जो इनके ऊपर चार्जेस आ गए थे उसको फाइट किया. आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इनको बुलाया हुआ था और वहां पे ये इन्होंने लेक्चर दिया. वैसे एक लेक्चर नहीं था वो, एक इनकी जो थी कोई छोटी सी एक परफॉर्मेंस टाइप की थी, और जो है उसमें डायरेक्ट लेक्चर नहीं था. शेक्सपियर का जो प्ले है टिमन ऑफ एथेंस, उसको उसकी कुछ लाइनें यहां पर उन्होंने पढ़ी. आपको पता ही है कि टिमन ऑफ एथेंस बहुत ही इनका एक शेक्सपियर का पॉपुलर 1600 का में 1600s में जो उन्होंने प्ले लिखा था, जिसमें कि ये था कि बहुत सारे जो वेल्दी एथेंस के लोग थे वो एक आदमी के आसपास घूमते थे, उनको लालच था और वो बहुत सारे उससे फायदे उठाने चाहते थे, और जैसे ही वो उसके पास से दौलत वौलत चली गई तो वो सारे इसको छोड़ के चले गए. तो इन्होंने जब ये एक्ट किया तो इन्होंने कुछ खास वजह तो नहीं बताई कि इन्होंने क्यों इसको चूज किया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि दिस इज क्लोजर टू माई हार्ट एंड इट सॉर्ट ऑफ यू नो बियर्स पैरेलल टू माई लाइफ. तो ऐसी बात है. फरहान अख्तर साहब ने जी आज सोशल मीडिया के ऊपर ये हिंट दिया है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल वो लेके आ सकते हैं. इसके ऊपर ऋतिक रोशन और अभय देओल जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो गए हैं. तो इन्होंने अपने जो है वो कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि इमरान लुक कम्स फुल सर्कल. What से जोया अख्तर, जोया अख्तर इनकी बहन है जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी. तो शुड बॉयज हेड ऑन अनदर रोड ट्रिप, तो उसके ऊपर अभय ने कहा कि आई हैव माई बैग वती पैक्ड सिंस 2012, व्हाट कीप्स यू गाइज, व्हाट्स कीपिंग यू गाइज. ऋतिक ने इसके ऊपर कहा लेट्स गो, बहुत सारे ओज उन्होंने लगाए उसके ऊपर. और जोया ने कहा कि मेरा भी बैग वती जो है बिल्कुल पैक्ड है, विच मीन्स के शायद अब इसका सीक्वल आएगा. इमरान हाशमी ने जनाब आज बॉम्ब ड्रॉप किया. उन्होंने अपनी बड़ी ही खतरे में नाक जो लुक है जो टाइगर 3 में आप नजर आने वाली है. इससे पहले तो हम बात यही कर रहे थे कि टाइगर 3 के अंदर कैटरीना कैफ और सलमान है. अब इसके अंदर जो है इमरान हाशमी भी नजर आएंगे, और वो कह रहे हैं जी मैं आई वॉज डाइंग टू शेयर दिस न्यूज. और इसके अंदर ये बड़े ही रुथलेस मर्सनरी आतिश का रोल करने वाले हैं, जिसका के काम है कि हर हाल में ये जो टाइगर है यानी सलमान खान है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, कभी भी इंडिया को प्रॉब्लम होगी तो ये आएगा उसको बचाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये कुछ भी करेगा. तो वो कहते हैं जी इमरान हाशमी कहते हैं कि इसके अंदर मैं बहुत ही डिफरेंट किस्म का विलन आपको नजर आऊंगा, और मैं माइंड गेम्स करूंगा और बड़ा अपने दिमाग को ग्रेटेस्ट वेपन की तरह यूज करूंगा, और मेरी बड़ी अथॉरिटी रहेगी डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, और उनके साथ मैं कुछ भी मैनिपुलेट करके उनसे करवा सकता हूं, और मेरा काम रहेगा इसको जो है डाउन करना एट एनी कॉस्ट, यानी कि टाइगर को सलमान खान को नीचे करा, तो लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड, वो कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर इट। पाकिस्तान ने जनाब आज फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहे हैं क्वालिफायर, उसमें हिस्ट्री क्रिएट की। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने कंबोडिया को 1-0 से जो है वो डिफीट किया। हारून हमीद जो है उन्होंने 67th मिनट में पाकिस्तान के लिए गोल किया, और बड़ी हिस्टोरिक ये जीत उन्होंने फीफा में, पहली दफा पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम जिसने बड़ा जो है वो कमाल दिखाया है। और पाकिस्तान के अब क्लैशेस जो हैं सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ताजिकिस्तान के साथ हैं ग्रुप सिक्स में, ग्रुप जी में, और अब ये राउंड टू के लिए जो है क्वालिफाई अगर इनसे जीतेंगे तो करके जाएंगे। कैनेडा की जो लैला फर्नांडिस हैं, 21 ईयर्स उनकी एज है जी, और शी इज एट WTA टूर इन एशिया, और उन्होंने जो थी विक्ट्री आज ली है ओवर वाइल्ड कार्ड एंट्री हैन्यू गुआ ऑफ चाइना इन द फर्स्ट राउंड ऑफ जियांगजी ओपन। और इस वक्त जो है लैला फर्नांडिस की रैंकिंग 43rd है दुनिया के अंदर। उनकी नेक्स्ट जो मैच है चाइना की यू जियाओडी से होगी फॉर राउंड ऑफ 16। और अभी रिसेंटली अभी संडे को इन्होंने हांगकांग ओपन जो है विन किया था, तो शी लुक्स क्वाइट फिट, और अगर इन्होंने विन किया तो फिर ये जो है आगे भी जाएंगी। और इनकी जो है ये जो हांगकांग ओपन में विक्ट्री थी उसकी वजह से 17 स्पॉट्स ये WTA रैंकिंग्स में अब ऊपर आ गई हैं। सो वे टू गो, वेरी यंग गर्ल, ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। इजिप्शियन स्विमर जो है अब्दुल रहमान समे, 23 ईयर्स उनकी भी एज है, और उन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में। वो कह रहे हैं जी कि मुझे लोग बेतहाशा थ्रेटन कर रहे हैं, मेरी फैमिली को कुछ पता नहीं है कि जब वो मुझे कॉल करते हैं और मैं फोन उठाता नहीं हूं कि क्या मैं जिंदा हूं या मैं मर गया हूं, क्या हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं। उन थ्रेट्स की वजह यह है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्विमिंग वर्ल्ड कप 2023 चैंपियनशिप में, और उसमें इन्होंने कहा था कि मैं अपनी विक्ट्री जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बड़ा सैड हूं, मेरे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पैलेस्टाइन के अंदर हैं उनके ऊपर जो इसराइल जुल्म कर रहा है। तो उसके बाद से फिर इनको आने शुरू हो गए थे बहुत ही थ्रेटनिंग कॉल्स। इन्होंने बहुत ही जो फेवरेट्स थे गेम के अंदर, आइजक कूपर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और माइकल एंड्रयूज ऑफ USA, उनको हराया था। और 50 मीटर बटरफ्लाई फाइनल के अंदर, ये जो ग्रीस के अंदर मुकाबले हो रहे हैं उसके अंदर, तो इन्होंने कहा था जी कि मैं तो अपना गोल्ड मेडल मैंने जीता है वैसे तो, लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल बहुत उदास है। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक साहब जो मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है उससे पहले बीमार हो गए हैं। इनको आ गया है बुखार और इनको हो गया है डेंगू, और इनको जो है वैसे टेस्ट किया गया है कोविड के लिए भी, और वैसे वो कह रहे हैं जी कि तमाम बाकी के भी जो लोग हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी और उसामा मीर जो हैं लेग स्पिनर, शायद वो भी बीमार हैं, तो वो भी उनका भी कुछ डावाडोल नजर आ रहा है। वैसे वो कह रहे हैं जी कि ये दोनों तो रिकवर फीवर से कर गए हैं, लेकिन अब कितना कर गए हैं, क्योंकि October 20th को पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है जो कि बहुत ही सख्त होने वाला है। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक जो आपको पता है ये बड़े स्टार बैट्समैन रहे, October 11th का जो मैच था उसमें बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी टू मेक 100 ऑन हिज वर्ल्ड कप डेब्यू अगेंस्ट श्रीलंका। तो अब ये बीमार हैं, पता नहीं ये कर सकते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट टुडेज मैच। क्या धांसू मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड कप 2023। नेदरलैंड्स ने तो जी आज कमाल किया, स्टन किया साउथ अफ्रीका जैसी धांसू टीम को, और इनको 38 रन से हराया एट धर्मशाला। बैटिंग फर्स्ट जो डच टीम थी उसने 245/8 स्कोर किया था, और बहुत ही बैड वेदर की वजह से ये मैच चूंकि लेट शुरू हुआ था तो 43-43 ओवर्स दोनों को मिले थे। साउथ अफ्रीका ने टॉस विन किया था और बोलिंग का इरादा किया था। स्कॉट एडवर्ड्स जो थे वो नेदरलैंड्स के लिए टॉप स्कोरर थे, 78 उन्होंने बनाए रन्स फॉर 69। साउथ अफ्रीका के पेसर कजिस्को रबादा और मार्को जेमसन जो हैं उन्होंने 2/56 एंड 2/28 रन्स जो हैं वो विकेट्स ली। और साउथ अफ्रीका जो है उसने एक चेंज की थी, उसने रिप्लेस किया था तबरेज शमसी को और लाए थे जैरल कोट्जी को। और नेदरलैंड्स ने भी एक चेंज की थी, लोगन वैन बीक को लाए थे इन प्लेस ऑफ रायन क्लीन। तो बहरहाल जी आज का मुकाबला नेदरलैंड्स ने जीता।
जी बिल्कुल, ये खबरें, और इसके बाद जो है एक लेते हैं टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ कैसर सगीर जो है वो जुड़ चुके हैं और फिर उनके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं।
विरोध ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दा दा भी चलाउने हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या क्विक ट्रक ल्यूब.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
سٹی آف برامپٹن گرو گرین ٹیم چاہتی ہے کہ کمیونٹی ماحولیاتی اقدامات کی وسیع رینج کے بارے میں جانے، جیسے گاربیج کی صفائی، کمیونٹی میں پودا لگانے کی تقریبات، کمیونٹی باغبانی اور بیجوں کا اشتراک، موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے لچک پیدا کرنا اور گھر میں توانائی کی کارکردگی کو بہتر بنانا، طوفان کے پانی کے انتظام کے پروگرام اور طوفان کے پانی کے تالاب کی حفاظت، سیلاب سے بچاؤ اور بحالی اور عوامی آرٹ پروجیکٹ پر وسائل اور سائیکلنگ اور الیکٹرک اسکوٹر پروگرام اور دیگر پائیدار نقل و حمل کے اقدامات۔ مزید جاننے کے لیے وزٹ کریں brampton.ca/growgreen۔
اپنی کمیونٹی دا سب تو وڈا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے۔
او پھر بنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بیڈ روم سیٹ، صوفہ سیٹ، میٹریسز، ڈائننگ ٹیبل، ڈیکوریٹو آئٹمز، گل کی جی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج۔
142 کینیڈی روڈ، برامپٹن، 9058747171۔
اس فال وچ آ رہا ہے سٹیشن سائیڈ، سب تو وکری تے سونی رہائش جیڑی ملٹن ڈاؤن ٹاؤن وچ شرطیا، بہترین قیمت 487,990 ڈالر وچ دستیاب ہے۔ دو ٹاوراں والی اس بلڈنگ وچ سینٹرل پوڈیم تھانی، انڈور تے آؤٹ ڈور اعلی درجے دیاں سہولتاں دتیاں جان گیاں۔ ملٹن گو سٹیشن دے نال بالکل جڑیا سٹیشن سائیڈ آواجاوی دیاں سہولتاں دیندا ملٹن فیوچر موبیلٹی ہب دا نیں پتھر ہے، جڑا تانوں سیدھا تہاڈیاں منزلاں تے پہنچاوے گا۔ جی ٹی اے دے پھل دے پھول دے مستقبل وچ اپنی انویسٹمنٹ دا سکھا تے میٹھا رزلٹ پاؤن لئی اج رجسٹر کرو stationside.ca۔
اوکے جی، ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ آگے ہیں کیسر صغیر، اب ہم ان سے بات کریں گے گرما گرم، یہ کیا چل رہا ہے، یہ ورلڈ کپ میں اتنے اپسیٹ۔ تو کیسر صغیر ہمارے ساتھ ہیں، ذرا پہلے آج کے میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر جو کل کے ہمارے کوسچن رہ گئے تھے نا، جو ہم نے ان کی ذرا زیادہ عزت خاطر نہیں ہم کر سکے تھے، جو میرے سے یہ شرط ہار گئے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے وہ پاکستان جیتے گا، انڈیا نہیں جیتے گا، تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو ہیلو کیسر، ہاؤ آر یو؟
جی آئی ایم فائن، تھینک یو سو مچ۔
اچھا جی آج تو بتائیں، آج پھر سے ایک اور اپسیٹ ہو گیا ہے، وہ پہلے جو ہے وہ اس نے افغانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے، آج نیدرلینڈز نے آسٹریلیا جیسی، سوری ساؤتھ افریقہ جیسی دھانسو ٹیم کو ہرا دیا ہے، بھائی واٹ از دس گوئنگ آن؟
دیکھیے نا، جب تک اس طرح کے میچز اگر نہیں ہوں گے نا تو ورلڈ کپ کا مزہ ختم ہو جائے گا۔
اچھا،
بہت سے لوگ تو خیر بہت سی باتیں کرتے ہیں، میں نے بھی ایک ہلکا سا اشارہ دیا تھا آپ کو دو تین دن پہلے کہ تھوڑا سا دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں۔ اگر ایک ٹیم اسٹیٹ ون کرتی جائے گی، دوسری بھی اسٹیٹ ون کرتی جائے گی، تو ورلڈ کپ کو کون دیکھے گا؟ لیکن بہرحال یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ تھا، لیکن دیکھا جائے تو میں حیران نہیں ہوں، سیریسلی میں بالکل حیران نہیں ہوں، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں نا ساؤتھ افریقہ کی، تو آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے پیٹرن پہ کھیلتی ہے، بلکہ شاید تھوڑا سا مطلب اس کا کچھ ایج ہے، جب وہ اچھی بیٹنگ پر آتی ہے تو ٹھیک ٹھاک قسم کے رنز بھی کرتی ہے، لیکن ادروائز جب ان کا کولیپس ہوتا ہے نا تو بالکل مجھے وہ پاکستان ٹیم کی طرح یاد آتی ہے، کہ مطلب یہ وہ ٹیم ہے جو آپ بہت سے ایسے سال گزریں گے جب آپ یہ دیکھیں کہ نمبر ون تھی یہ ٹیم ٹیبل میں، رینکنگ میں یہ ٹیم ہمیشہ نمبر ون تھی، لیکن جو ہی یہ بڑے ایونٹ میں آتی ہے، وہاں آنے کے بعد یہ کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کرتے ہیں جس میں لوگ تھوڑا سا حیران بھی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے آپ دیکھیں، نیدرلینڈ جو ہے نا وہ اتنی کمزور ٹیم نہیں ہے، وہ ٹیم کوالیفائی کر کے آئی ہے، اور ساؤتھ افریقہ جو ہے اس کا کبھی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ورلڈ کپ، اس نے تسلسل سے پرفارم نہیں کیا، ایسا نہیں ہوتا کہ تسلسل سے سارے میچ جیت کر وہ آگے چلی جائے۔
اچھا، یہ اگر آپ کا آج کا پریڈکشن ہے کہ جی ساؤتھ افریقہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتی کہ تسلسل سے جیتتی جائے، تو پاکستان بھی تو 7 دفعہ انڈیا سے ہار چکا تھا، تو آپ نے کیسے کہا کہ نہیں جی پاکستان جو ہے وہ اس کے چانسز ہیں، انڈیا نہیں جیت سکتا یا نہیں جیتے گا، جو بھی آپ نے کہا تھا یہ آپ نے کیسے کہا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے پارٹی کب دے رہے ہیں، پہلے یہ بتائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
دیکھیں جو آج آپ کے جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، یہ جو آپ کہہ کے لگا رہی ہیں، یہ کیسے ممکن تھے اگر ہم آپ کو خوش نہ کرتے؟
خوشی کے لیے پاکستان ٹیم ہو رہا ہے،
ہم نے تو آپ کی محبت میں جو ہے وہ سب کچھ کیا۔
اچھا
کہ آپ ناراض ہو جائیں،
بالکل۔ اچھا کیسے، یہ تو لائٹر موڈ پہ بات۔ اچھا ایک وہاں پہ جو اب ہوا ہے जो वहां पे स्टेडियम का माहौल था उसके ऊपर तो पीसीबी ने शिकायत भी अभी आईसीसी को की है, लोग भी बड़े भड़के हुए थे, खुद हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने कहा कि हमारा तो इस तरह का कोई तरीकाकार ही नहीं है, हम तो लोगों को बड़ा वेलकम करते हैं हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान टीम के साथ आप लोगों ने किया, यानी गालियां दी गई और बड़े गंदे इशारे किए गए। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे जो गंदे इशारे किए जा रहे थे, और वो मोहम्मद जब रिजवान जा रहा था तो उसके मुंह पे आगे आगे जाके जय श्री राम कर रहे हैं और इस तरह। तो ये ये इतना अनरूली किस्म का बिहेवियर जो है, और फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस को वीजे भी नहीं दिए, तो मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, ये तो सारा कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है ना आईसीसी के।
देखिए मेरे ख्याल से ये मतलब ये भी इतनी हैरानकुन बात इसलिए नहीं है कि अगर आप मुसलसल उनके स्टेप्स देखें ना, जो कुछ वो करते आ रहे हैं, इवन जो एशिया कप में हुआ था, जिस तरीके से एशिया कप को खराब किया गया, जिसमें कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं था, सारे मैचेस आप बिल्कुल एक अनसर्टन सी कंडीशन में हुए कि बारिश होगी नहीं होगी, अगर होगी तो मैच मुतासिर होगा। मैंने खुद क्रिकेट खेली और जो भी आमिर भाई बैठे हैं और भी लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता है कि जब आप एक दफा स्टेडियम ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं ना तो आपका सारा टेम्पो टूट जाता है, उसके बाद जब वापस आते हैं तो आपकी ना तो एनर्जी लेवल होता है ना वो आपका पैशन होता है। तो इसलिए मेनली जो इस वर्ल्ड कप में स्टार्ट कहां से हुआ कि आप ये कभी आपने नहीं सुना कि वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा और आपके जो जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उनको आप वीजा ना जारी करें, वो भी एक अलग चीज है। उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान से जितने लोग जाना चाह रहे थे, लाजमत है कि आपकी सरहदें मिलती हैं, कोई इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं है, इवन अगर आप बस के जरिए जाते हैं तो वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको वीजे नहीं दिए गए। तो जब आपने वीजे नहीं दिए तो क्या होना था ग्राउंड में? ग्राउंड में यही होना था कि आपके 100% वो लोग थे जिनको मतलब ये समझ लें कि चौका लगता था पाकिस्तान की तरफ से तो सांप सूंघ जाता था। आपने कहीं ऐसी एनवायरमेंट नहीं देखी होगी जो क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक होती है, जब तक आप एक मैच को एंजॉय करते हैं, ये कोई मतलब ठीक है कि इसको बहुत ज्यादा हवा दी जाती है, बहुत ज्यादा दोनों तरह के जो चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा इसमें हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसमें आपको लोगों को लाना होता है, अपने एक बैलेंस करना होता है। आप देखिए जब भी मैच आपके यूरोप में हो रहे होते हैं कहीं और हो रहे होते हैं तो आपको अगर ब्लू ज्यादा नजर आ रहे हैं, शर्ट्स नजर आ रही है ज्यादा, तो आपको उतने ही ग्रीन भी नजर आ रही है, चले उससे 25% नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आपने 100% लोगों को ले आया बीच में तो उसमें बहुत से ऐसे लोग बीच में आए जो क्रिकेट से ज्यादा उसको एक ये नहीं कहने के टारगेट मतलब था उनका कि भी किसी तरीके से हम इसको डाउन करें। और जैसे रिजवान को इसलिए ज्यादा टारगेट किया गया कि रिजवान ने पैलेस्टाइन के हक में एक स्टेटमेंट दी थी, तो उसका मतलब देखिए ना इसका स्टार्ट कहां से हुआ, आपका आपकी जो ज़ैनब अब्बास है उसको वहां से वापस भेजा गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को 10 साल पहले एक ट्वीट की गई है उसकी बिना पे आप उसे टारगेट करें। उसके बाद रिजवान के बारे में कहा जा रहा है कि उनके उन पर उन्होंने ग्राउंड में नमाज पढ़ी तो उनके ऊपर एक वकील ने केस कर दिया। ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने जीतना है तो ठीक है, फिर पाकिस्तान को चाहिए कि बैग वगैरह उठाए अपने वापस आ जाए। मुझे तो अपने बोर्ड भी हैरत होती है कि हम क्यों नहीं, ये आप पाकिस्तान एक नंबर वन टीम थी रैंकिंग की, चले 8-10 दिन पहले थी या 15 दिन पहले थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम की अहमियत को पूरी दुनिया मानती है, तो उसमें पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो इस कदर मायूस कुन सूरत हाल है कि वो कुछ एक सिंगल मतलब कह रहे फिक्र नहीं कह रहा। जो आपने बात की है कि जो ग्राउंड में थे तमाशाई थे या जो भी मतलब उनका 100% वो था, तो उसमें देखे ना कि किसने आपकी आवाज बुलंद की, मिकी आर्थर ने, आपका बोर्ड फिर भी खामोश था, किसी की तरफ से आवाज नहीं आई, मिकी आर्थर ने बात की है, और उसके अलावा मतलब लोगों ने बहुत सी मीम्स बनाई, वो एक सीआईडी बड़ा एक प्रोग्राम है, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, उसके मतलब जो मेन कैरेक्टर है उनको दिखा रहे हैं, आपके बाउंड्री लगती है तो वो जो है ना बिल्कुल जैसे सो रहे हैं, और जब डॉट बॉल होता है तो वो कैके लगा रहे हैं। तो क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये कोई अच्छा मैसेज आप दुनिया को नहीं भेज रहे। आप जब किसी चीज को इंतहा की तरफ ले जाते हैं ना तो फिर आप ठीक है जीत भी जाएंगे लेकिन उसका क्या मजा है? तो क्रिकेट तो हमेशा फाइट करने का मजा है। देखे ना दोनों मुल्क एंजॉय करते हैं, आपकी क्राउड में एक मतलब पूरे 50 ओवर्स एक सेंसेशन होती है, एक लोग उस पे फन के तौर पे भी लेते हैं, लेकिन अच्छा। ये जो वर्ल्ड कप है एशिया के कप की तरह बहुत ही मायूसकुन जा रहा है।
अच्छा अब जो नेक्स्ट मैच आने वाला है जी पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से अक्टूबर 20 को, उसकी क्या आपकी प्रेडिक्शन है जरा तक बताए आप।
देखिए ना वही बात होगी कि आप अब आपको खुश करने के लिए हम फिर कुछ ऐसा कहेंगे
नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया इनकी नहीं है भाई, अब खुश नहीं करना, अब खुश नहीं करना इनको।
अच्छा, आमिर भाई ने कह दिया तो इसको हम आपको खुश नहीं करेंगे।
अच्छा
ठीक है, देखे ना, हालांकि हमारी टीम में कोविड वाला मामला भी चल रहा है इस वक्त। हाँ। अब्दुल्ला शफीक भी मुतासिर हुए हैं, और कोविड तो ये कह लिया कोई वैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की सूरत हाल है ना, पाकिस्तान की सूरत हाल भी उसी तरह की है, तो इसलिए इस वक्त खैर हम आपको थोड़ा सा खुश होने का मौका नहीं देंगे, आप बिल्कुल मुतमिन रहे कि इस वक्त पाकिस्तान जीतेगा।
अच्छा, इस दफा जो मेरी प्रिडिक्शन है ना वो 60-40 की है। अच्छा, पिछली दफा तो मैंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी थी ना कि इंडिया ही हर हाल में जीतेगा, इस दफा जो है मैं 60-40 की दे रही हूं। 60% मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा, 40% स्टिल मैं कह रही हूं, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, 40% मुझे अभी भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत सकता है पाकिस्तान से। तो आप
ये तो अपने पॉलिटिक्स की है ना, ये तो अपने पॉलिटिक्स की है कि ठीक है अगर वो जीत गए तो ठीक है जी, मैंने 40%
तो देखिए जी, मेरी तो आपके साथ पहले भी यही डील थी कि अगर पाकिस्तान हारेगा तो आप मुझे दावत देंगे, और अगर जो है पाकिस्तान जीतेगा तो हम दावत के लिए आपके पास आ जाएंगे।
जो हमारा कल्चर है ना, देखिए हमें तो खाने का वैसे भी बहाना चाहिए होता है।
हाँ।
अकेले भी खाना होता है तो आप शामिल होंगे और भी अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह हम पार्टी करेंगे।
अच्छा, तो इस दफा आपको लग रहा है
पार्टी ड्यू है?
ठीक है, पार्टी ड्यू तो ठीक है, इस दफा आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगा?
देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इंडिया के खिलाफ जैसे टीम खेली है बहुत मायूसपूर्ण था, लेकिन जो आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को देखें ना, ऑस्ट्रेलिया भी 199 पे आउट हुई थी इंडिया के खिलाफ, उसके बाद जो उसने दूसरा मैच हारा वो भी कोई मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया, तो बात ये हो रही कि तीसरा मैच उन्होंने श्रीलंका से जीता है, लेकिन वो भी मैं नहीं समझता कि वो वन साइडेड या कोई ऐसी चीज हुई है, तो पाकिस्तान के मैचेस बेहतर रहे हैं इसके निस्बत, नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जो मैच जीता था, या पाकिस्तान ने जो श्रीलंका से एक बिल्कुल अपना क्या लेंगे,
श्रीलंका में तो आखिरी वक्त में रो के जीता है, कौन सा कोई बड़ा कन्विंसिंगली जीता है
किसने?
पाकिस्तान ने,
श्रीलंका से नहीं, लेकिन आप देखें ना टारगेट क्या था, असल बात ये होती है कि मैच का जब वो एक्सट्रीम पे जाता है ना, वही आपके जो पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और पाकिस्तान ने 2 ओवर्स पहले वो टारगेट पूरा किया है। अगर पाकिस्तान की टीम देखे ना कि आपने 48 इयर्स हो गए और वर्ल्ड कप को लोग टीमें खेल रही है और बड़ी बड़ी कमजोर टीमों के खिलाफ भी खेल रही है, लेकिन इतना बड़ा जो टारगेट था वो चेस करना बजाते खुद बहुत बड़ी बात है, और 280 के करीब रन किए थे इन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ भी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले खेलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
अच्छा चलो, मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देती हूँ सर, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ठीक हो आप खुश हो?
हाँ नहीं, ये अच्छा बनता है,
ये अच्छा बनता है। अच्छा आप कह रहे हो फिर, अब फिर से शर्त है इसके ऊपर, ठीक है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा, मैं कह रही हूँ ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, चलो ठीक है 60-40 हम खत्म ही कर देते हैं, छोड़े दिल बटा करें हैं।
देखिए हम तो वो कहते हैं कि हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे।
अच्छा अच्छा, है जज्बा जरूर तो हिम्मत ना हार है जी,
बिल्कुल ऐसे ही ना कि हम लोग तो देखिए ना, बात का ये होता है कि इंडिया की दफा तो मैं बिल्कुल जैसे आपने कहा था, हर एक को नजर आ रहा था वो इंडिया की टीम बॉलिंग बैटिंग हर चीज में स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सारे लोग एक साइड पे हो जाए वो भी अच्छा नहीं होता ना, थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए।
अच्छा,
अगर आप सरहद को इस पार है तो सरहद के इस पार है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है।
अच्छा चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं है, तो अब नेक्स्ट मैच में हम देखेंगे क्या होगा, और अगर कैसर सगीर साहब आप जो है आप अगर इस दफा भी मेरे से हारे, हमने आपको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं कहना, हमने आपको बस सिर्फ कहना है स्पोर्ट्स।
नहीं, अगर आपका ये क्राइटेरिया देखे ना, मजे की बात ये, अगर इस तरीके से क्राइटेरिया बनाएंगे ना, तो आप देखिए इस वक्त टीवी चैनल्स पे अमाद वसीम है, इस वक्त टीवी चैनल पे मोहम्मद आमिर है, इस वक्त टीवी चैनल पे अब्दुल रजाक है।
हाँ।
वो एक प्रोग्राम में शामिल है सारे के सारे, और वो टीम में खेलते हैं, मतलब खेलते रहे रिसेंटली, सबके सब खेलते रहे, आप जाकर देखें उनकी प्रिडिक्शन देखें तो आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, वो टीम का हिस्सा थे।
अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं सर, ये तो दिस वाज जस्ट ऑन द लाइटर नोट, ये आपका बिल्कुल जो आपका टाइटल है वो तो रहेगा, वो तो कोई छीन नहीं सकता आपसे ना, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो आपका टाइटल था, जो आपने काम किया, और सारे बड़े बड़े स्टार्स की आपने इंटरव्यूज लिए हुए, तो वो तो आपका जिंदगी का एक जो है वो है हासिल है जिसको बोल सकते हैं। ठीक है जी, ओके।
एक और बात को मैं ऐड करता हूँ, देखिए हम मतलब हमारा जो वाहिद एक कह लें कि एक अच्छा ड्रीम तो नहीं है, जो रियलिटी है जिसको हम अक्सर याद करते हैं, वो 92 का वर्ल्ड कप है, और उसमें आप देखें कि आपके जितने भी स्टार्स थे, जिसमें जावेद मियादाद भी थे, जिसमें मतलब आमिर सुहेल ये बाकी लोग भी शामिल थे, सारे लोग,
वसीम वकार इमरान,
वसीम वकार रमीज भी था सब ना। अगर आप उन सबके इंटरव्यूज देखें तो सबके सब कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हैं। यानी कि आप मैं बता रहा हूँ एग्जिस्टिंग जो लोग टीम में खेल रहे हैं,
लेकिन इमरान तो कह रहा था ना, इमरान तो कह रहा था ना हम जीतेंगे, हम जीत सकते हैं,
मैं कह रहा हूँ ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें कि जो लोग खेल रहे होते हैं ना टीम में, उनके लिए भी, क्योंकि हम क्रिकेट एक ऐसी मतलब अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है, लेकिन हम जिस टीम की बात करें ना वो अनप्रिडिक्टेबल है।
चलो ठीक है, ठीक है।
अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो उनकी एक अभी आजकल बड़ा तसलसल चल रहा है उनकी परफॉर्मेंस में। हाँ। आजकल वो इस तरह खेल रहे हैं जिना कल 4-5-10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया खेलता था।
ठीक है, ओके।
तो इंडिया के बारे में प्रिडिक्ट करना आसान है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमेशा ये होता है कि मतलब हम ख्वाहिश हमारी यही है कि पाकिस्तान जीते। मैच वाले दिन ये क्या करेंगे वो ये मेरे ख्याल प्लेयर्स भी नहीं जानते।
चलो ठीक है सर, फिर उन्होंने हारना है सो प्लीज ब्रेस फॉर इट। ओके,
इसलिए मैंने बड़ी सफाई से मैंने अपने आप को बचा लिया।
ठीक है, आज ही पतली गली से निकल गए आप। चलो ठीक है, हम आपको इसका मार्जिन देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे कैसर 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन में फिर से हम जुड़ेंगे आपके साथ, तो फिर और डिस्कशन होगी, क्योंकि 20 अक्टूबर पैस आ जाएगी ना, तो फिर उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है,
मजा ही तब आएगा ना।
ठीक है,
जब फ्री आएगा उससे पहले जब भी हम बात करना चाहते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत अपना यादों का जरूर रखा करें, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत याद है, वो हम 4-5 मिनट उस पर बात करें तो ज्यादा इंटरेस्ट।
वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव फॉर टुडे, और हम आपके साथ फिर कनेक्ट करेंगे, बट बाय फॉर नाउ।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू
जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कैसर सतीर, हमारे स्पोर्ट्स का सेगमेंट, और अब जो है वो जाने का टाइम जो है शायद ही आ गया। बहुत शुक्रिया आपका शायद।
थैंक यू आमिर, आमिर खुदा के लिए ये काली कोटी पे ये छोड़ दो, ये गम मनाना छोड़ दो।
नहीं, हम जब जीत जाएंगे तो फिर ये गम भी उतर जाएगा।
अच्छा, फिर लाल पहन के आओगे?
फिर जो है हरा पहन के आएंगे।
अच्छा अच्छा,
फिर तो हरा आएगा ना।
देन दैट डे यू विल ब्लीड ग्रीन
इंशाल्लाह फ्राइडे को।
ठीक है,
जब ये मैच जीत जाएंगे
ऐसे ना तुम्हारी टीम फ्राई हो जाए।
आप जो है ना वो जिंस बना देती है, आप ऐसा उसमें क्रिएट कर देंगे। मैं नहीं, बात ही वो जैसे आपने मालिक भाई का हाल किया ना, ब्लू जेस का
नीले जेस।
मैं नहीं चाहता कि अभी वक्त ये टाइम खत्म हो गया, मैं नहीं चाहता कि यहाँ भी जो है पाकिस्तान के साथ हो जाए। तो बहुत शुक्रिया सर जी आपका।
ओके जी, थैंक यू, ओके बाय।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका,
आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। तो नाजरीन और सामईन जो हमें आवाज टीवी और रेडियो 770 पे सुन रहे हैं, मुझे आमिर अहमद को, हमारी पूरी टीम को, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद को आज इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आएंगे, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, मैं सबके लिए ये दुआ मांगता हूँ, करम
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
यू आर वॉचिंग eawaz टीवी, वॉइस ऑफ कम्युनिटी।
साहब खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास मुजफ्फर आपके साथ टोरंटो से, हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जनाब रऊफ हसन साहब से, जो सेक्रेटरी PTI हैं। मेरा ख्याल है कि आप से एवरीडे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हों, लॉयर्स की मुलाकात हो, तो आपके नोटिस में लम्हा बलम्हा तमाम इंफॉर्मेशन हुआ करती है। और मैं आप तमाम को एक बात कहती हूँ कि बाज़ औक़ात हम आप सोशल मीडिया पे ये जो बाज़ न्यूज़ आ जाती हैं उन पे बिलीव करने की बजाय आई रिक्वेस्टेड जनाब रऊफ साहब कि आप हमारे साथ डायरेक्टली शेयर करें कि क्या आगे लोगों के लिए क्या लाया अमल है या क्या सूरत हाल है। बहरहाल जनाब रऊफ हसन साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं द न्यूज़ में, उनका भी एक आर्टिकल पिछले दिनों आया है, केज जस्टिस एंड नम्ड ब्रेन्स। वाकई दिन दिमागों को माउफ किया हुआ है और कानून जो है वो खुद मोटी मोटी लोहे की जो सलाखों के पीछे हमारा कानून बंद है उसी हवाले से। मगर साहब आई डोंट नो दुनिया क्यों इस बात को महसूस नहीं कर रही, वो डार्क एजेस थी जिसमें जो खबर दी जाती थी उस पर यकीन हो जाता था। आज के दौर में हर इंसान के पास कैमरा है, हर इंसान के पास डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज़ हासिल करने के तरीका है, कार है। और इस पूरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने मकासद के हसूल के लिए फेक न्यूज़ भी पोस्ट कर रहे होते हैं। ये चीज़ें कौम में इबहाम पैदा करती हैं, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। मगर मेरे मुल्क में जब मैं सलेबियों का जिक्र करती हूँ तो उन्होंने औरत को ढाल बनाया, चीज़ों को, इंसानों की ज़िंदगियों को ढाल बना के अपने मकासद का हसूल किया। बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस उन लोगों के लिए जो कलमा गो है। मगर मुझे यहाँ से एक प्रोग्राम याद आता है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, आई रिमेम्बर आई वॉज देयर, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ थे। एक यंग बॉय ने स्पीच की थी कि चिड़ियाँ आती हैं दाना डालती हैं, और उसमें था कि मारने वाला भी कलमा गो है और मरने वाला भी कलमा गो है। आज मुझे दहशतगर्दों की बात को तो मैं करती नहीं हूँ, मगर वो लोग जो जिनके हाथ में ताकत है, वो अपनी ताकत के हसूल के लिए, अपनी पोजीशन के हसूल के लिए, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कलमा गो के ऊपर जिस तरह से तलवार तान के खड़ा हुआ है, ये इबहाम इन द लॉन्ग रन मुल्क के लिए बहुत डेंजरस होगा। बहरहाल जनाब रऊफ हसन साहब मेरे साथ हैं, आप लिखते हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हम रिवॉल्व करेंगे उन्हीं की एक आर्टिकल है, केज्ड जस्टिस एंड नम्ड ब्रेन। दुनिया में 139th नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया का निज़ाम आ रहा है, मगर हम समझ नहीं पा रहे कि इसमें हमारी कितनी सुबकी है, हमारी कितनी इंसल्ट है। मैं बल्कि प्रोग्राम की इब्तदा ज़ाहिर उन्हीं से करूँगी, मगर एक पोएम फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा, उसी कलाम से मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ कि निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्त कुशाद के संगो खश्त मुकैद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें, मगर گزرنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراق میں, صبح و شام کرتے ہیں, دن ایسے ہی گزرتے چلے جائیں گے, مگر تاریخ اپنے آپ کو رقم کرے گی ضرور. آج جو کچھ ہو رہا ہے, آج کے 10 سال کے بعد آپ اس کو کتابوں میں بھی پڑھیں گے, اور پھر ایک اور بار لوگ سوچیں گے کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ. مگر جن لوگوں کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, وہ کیوں اس چیز کو احساس نہیں کرتے؟ پاکستان از ویری اسٹرانگ, ہمارے پاس سب سے زیادہ یوتھ ہے, اور آج سے 10 سال کے بعد یہ جو آج کی یوتھ ہے, جب ان فیکٹس کو پڑھے گی ان کتابوں میں, تو آپ امیجن کیجئے گا کہ پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی, ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. میں آگے لے کر کے چلتی ہوں جناب روح حسن صاحب, انہی سے زیادہ سننا چاہتے ہیں. سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام عارفہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں.
آلویز ان ویری پلیزنٹ ٹو سی یو. آپ کا ایک آرٹیکل ہے اور آج کے اس آرٹیکل میں
یور پروگرام آلویز
سر, کیج جسٹس اور نمڈ برینز کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے, اس کا لاسٹ بڑا خوبصورت ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت کی جو پاکستان کی صورتحال ہے, اور خان صاحب سے یقیناً آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں, تو میں آپ ہی کی زبانی زیادہ سننا چاہوں گی اب اس کے بعد.
آئی ڈونٹ نو وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب این آر او مانگیں گے. یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس شخص کو جو اس وقت پابند سلاسل ہے. وہ کٹ جائے گا لیکن وہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا کبھی بھی, کسی صورت میں بھی, انڈر اینی کائنڈ آف ٹیورس, اینی شیڈ آف ٹیورس. نو, ہی از ناٹ اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو آئی دا بریک ڈاؤن اور گوئنگ ٹو آسک فار اینی کمفرٹ. بالکل نہیں عارفہ بی بی, میں آپ کو یہ یقین محکم کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہی نہیں ہے. میں نے اسی آرٹیکل میں ایک بیچ میں لکھا بھی ہے, اور وہ امپورٹنٹ ہے اس کا ایکچولی, کہ پاکستان اس وقت عمران خان جو ہے نا, وہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو ری رائٹ کر رہا ہے, اور یہ جو دوبارہ سے لکھی ہوئی تاریخ ہوگی, یہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھائی جائے گی کہ اس شخص نے 75-76 سال کے اوپر محیط جو ایک طریقہ ایک کار بنا ہوا تھا اشرافیہ کا, اس کو ختم کر دیا ہے, اور آج اس کا کوئی پیروکار نہیں ہے سوائے وہ لوگ جو ابھی تک انہی لوگوں کے شکنجے میں کسی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں. اب کوئی خان صاحب جو ٹریڈیشن تھی کہ آپ حکومت سے نکالے گئے ہیں تو آپ نے ہاتھ جوڑا, پاؤں پکڑے اور کہا جی کہ مجھے باہر بھیج دیجیے, آپ باہر چلے جاتے تھے, اور اس کے بعد آپ اپنی پولیٹیکل ٹرکری کو دوبارہ شروع کر دیتے تھے کہ جی کس طریقے سے کمپرومائز کرنا ہے. سو سال دو سال لگتا تھا آپ کو معافیاں مانگنے میں, پاؤں پکڑنے میں, اور اس کے بعد پھر آپ معافی ملنے کے بعد واپس آ جاتے تھے اور مسند اقتدار کے اوپر براجمان ہو جاتے تھے. پھر 2-3 سال کے بعد آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھڈے بڑھتے تھے, اور پھر وہی رسم شروع ہو جاتی تھی, باہر چلے جاتے تھے, حرام کا کمایا ہوا پیسہ تھا اس سے خریدی ہوئی پراپرٹیز جو ہے اور اس سے خریدی ہوئی دولتوں کو انجوائے کرتے تھے اور معافیاں مانگنا شروع کرتے تھے. یہ ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی تھی, یہ ٹریڈیشن خان صاحب نے ختم کر دی ہے. آج وہ 3 مہینے ہو گئے ہیں, ان کو پابند سلاسل ہیں, کیا کیا پریشر ان کے اوپر نہیں ڈالا گیا کہ آپ جہاں چاہیں آپ کو بھیج سکتے ہیں, آپ چلے جائیے, آپ کو آپ کے تمام جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے, آپ جائیے آرام کیجئے, اور اس کے بعد وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا, لیکن ان کا ایک ہی جواب ہے کہ میں یہاں اس ملک میں پیدا ہوا تھا, یہاں ہی میں بڑا ہوا ہوں, یہ ہی میرا ملک ہے, میری کہیں جائیداد نہیں, میں نے کہیں حرام کا پیسہ کما کے باہر انویسٹ نہیں کیا ہوا, اور میں نے یہیں رہنا ہے, میں نے کہیں نہیں جانا, آپ نے جو کرنا ہے کر لیجیے. تو یہ پولیٹیکل ہسٹری جو ہے, پولیٹیکل جو آپ کی تاریخ ہے, یہ دوبارہ لکھ رہا ہے یہ ایک شخص اکیلا, اور آج ریاست کا تمام جبر وہ انلیش کیا ہوا ہے اس نے. آج بھی اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ایک پنجرے نما کنکاکشن اور کنٹریپشن جو ہے اس میں کھڑا کر کے, لیکن میں نے لکھا ہے اسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جتنا یہ اس کو ہمیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اتنا ہی یہ اپنا اسٹیچر ڈیمینش کرتے ہیں, اتنا ہی ان کا جو رتبہ ہے, مقام ہے, جو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو جو ویسے تو ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس کے उनको उसकी वजह से ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि खान साहब को लोग भूल जाएंगे, खान साहब हिस्ट्री हो जाएंगे। ये अल्फाज थे जो कहे गए थे कि यू नो वंस ही इज आउट ऑफ पावर ही विल बी हिस्ट्री, लेकिन ही हैज बाउंस बैक आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर। और आज खान साहब एक ऐसी फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल हकीकत है इस मुल्क की, जो कि जिनको कि आप झुटला ही नहीं सकते। कोई बंदा जो है इवन आवर वर्स्ट एडवर्सरीज नो वो भी नहीं झुटला सकते कि हाँ खान साहब ही इस मुल्क की सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल हकीकत है इस वक्त। मैं एक बात और करना चाहूंगा आरिफा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब खान साहब जवान थे तो उनके साथ लोग थे जो उनको उनके पैरोकार बने थे, वो जवान थे, मतलब टीनेजर्स थे और बड़े थे, 20s में थे, 30s में थे, वो उनके पैरोकार बने थे। आज खान साहब के पीछे जो लोग हैं वो इनके अलावा वो लोग हैं जो कि जब पैदा हुए तो खान का चर्चा था, उनके कानों में खान की आवाजें गूंजती थी। और आज वो लोग जो हैं वो उनका जो पैशन है वो बड़े हुए हैं, वो टीनेजर्स हैं, वो मे बी अर्ली 20s में हैं, वो लोग जो कि खान के कैरिश्मा के जमाने में पैदा हुए हैं, और उनका पैशन, उनकी कमिटमेंट जो है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तो ये खान को जितना दबाएंगे, जितना रियासत का जबर उसके ऊपर मुसल्लत करेंगे, खान उतना ही ज्यादा ताकत के साथ बाउंस बैक कर रहा है और करेगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, और इस हकीकत को आप जुटला नहीं सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये आर्टिकल जरूर देखिएगा, इसका वही 10वां पैराग्राफ है कि वो कहते हैं कि कन्फेशंस लोगों से जबरदस्ती कराए जाते हैं। अब आप ये बताइएगा कि आज 21st सेंचुरी में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस रूज पे पहुंच गई है कि आप एक सच और झूठ बोलने वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज से चोर को पकड़ सकते हैं, आप कत्ल करने वाले को पकड़ सकते हैं, और जब आप ये कन्फेशंस देख रहे हैं तो लोगों में ज्यादा अनरेस्ट पैदा हो रहा है और खान के साथ मोहब्बत, क्या खान साहब को इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है कि बाहर क्या हो रहा है और कौन कौन उनके बाहर जबरदस्ती कन्फेस कर रहा है कि जी 9 मई का वाकया उन्होंने करवाया था, क्या उनका रिएक्शन है इस पे?
उनको सब कुछ बताया जाता है जी। जो हमारे वकला हजरात हैं, जब वो वंस ए वीक उनको मिलते हैं, और उनकी बेगम साहिबा जब मिलती हैं वंस ए वीक, तो ये उनकी वसादत से उन तक पहुंचता है और उनको इन तमाम चीज़ों की आगाही है, और वो आज भी उतने ही वेल इन्फॉर्म्ड हैं जितने कि वो पाबंद सलासल होने से पहले थे। बिल्कुल पहुँचता है, और बहुत सों के बारे में जब वो अभी जेल में उनको अरेस्ट नहीं किया गया हुआ था, तो उस वक्त भी वो कहते थे कि ये जो लोग हैं जिन्होंने जंप किया है, आई यूज टू कॉल देम रैट्स हु जंप द शिप ओनली टू जंप इनटू देयर यू नो टू देयर डेथ। उनको पता नहीं होता ना, लेकिन वो एक जब शिप जो है वो डगमगाने लग पड़ता है तो वो कहते हैं ओ जान बचाइए, भागते हैं हम, तो वो भागते हैं जब नीचे, तो नीचे पानी होता है और उसमें डूब जाते हैं। सो दे आर द रैट्स बेसिकली। और ये मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था कि जी ठीक है मेल्टडाउन तो है, लेकिन इट्स अ क्लीन क्लेंसिंग प्रोसेस बेसिकली। आज जो पार्टी है वो क्लेंस हो गई है इन रैट्स से, इन जो आधे अंदर और आधे बाहर होते हैं, ये जो ना इधर के ना उधर के, ये सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी में किसी स्टेज के ऊपर आ गए थे, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू कर रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में कर रहा है। इसकी जो लेटेस्ट जो फॉर्म है वो है कि जी एक शख्स जो है वो गायब हो जाता है, और उसके बाद वो 15-20-25-30 दिन के बाद वो नमूदार होता है और एक कन्फेशन करता है कि जी खान साहब ने ये किया, खान साहब ने वो बुरा किया, और ये कि जी मैं तो उनको वॉर्न करता था लेकिन वो बात नहीं सुनते थे, दिस एंड दैट। सो वो जाता है, और उसके बाद उसके तमाम दाग जो हैं, तमाम धब्बे जो हैं, तमाम गुनाह जो हैं, वो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद उठ जाते हैं। उसके बाद वो आज़ाद करता है, और उससे पहले जो उसके साथ होता है उसका आप भी अंदाजा कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूं। सो ये एक नया एक पैटर्न है जो कि डेवलप हुआ है, क्योंकि 3 महीने के बाद, 9 मई के 4 महीने गुजरने के बाद तकरीबन, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा, तो अदालतों ने नोटिस लेना शुरू कर दिया था। इसलिए जो इसके जो कार फरमा है, जो ये करते हैं, वो अब नहीं चाहते कि जी हमारा जो हमारे जो 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 हमारे एक्शंस हैं वो अदालत में पहुंचे और अदालत उनके ऊपर बेल बेल्स इनको प्रोवाइड करे और ये सब कुछ करे। कंसिक्वेंटली उन्होंने ये नया मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जी बंदा गायब हो जाता है और बंदा रीअपेयर होता है 15 दिन 20 दिन महीने के बाद और वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट कर देता है। जहां तक अदालतों का सवाल है, आप देखिए कि आज 5.5 महीने हो गए हैं, हमारी बच्चियां जो हैं वो जेल में हैं, उसके अलावा हमारे जो यास्मीन साहिबा हैं वो जेल में हैं, महमूद रशीद साहब हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि तकरीबन 5.5 महीने से जेल में हैं। 5.5 महीने में अभी तक उनके चालान तक पेश नहीं किए गए, क्योंकि जब चालान आप पेश कर देते हैं फिर आपको प्रोसेस को इनिशिएट करना होता है, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ मौजूद ही नहीं है, कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। कंसिक्वेंटली 5.5 महीने से उनको तो जेल में रखा हुआ है लेकिन आप चालान पेश नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने उसके ऊपर अपना जो एक बुलेटिन है वो भी निकाला है कि कुछ तो खुदा का खौफ किया जाए कि जी कानून तो गायब है, जुडिशरी तो गायब है, सब कुछ गायब है यहाँ इस मुल्क में, कोई हर चीज जो है इस वक्त कैप्टिव होकर रह गई है, वो साहिब इकतदार लोगों के शिकंजे में कसी हुई है, पता नहीं क्यों मुझे तो समझ नहीं आती है। कहा जाता है कि जी उनकी बहुत सारी फाइलें हैं जो मौजूद हैं, कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी वीडियोज मौजूद हैं, कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी ऑडियोज मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। इस किस्म की जो है आजकल पाकिस्तान की जो ग्रेप वाइन है वो राइप है इस किस्म की गुफ्तगू से। सो आप जिस तरीके से भी इस सारी सिचुएशन को देखें, इंसान को शर्म आती है कि आज 2023 में एक सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क में ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको रवा रखा जा रहा है और इंसान की आज़ादी जो है वो एक किस्सा पारीना लगती है, इंसान के हकूक जो हैं वो किस्सा पारीना लगते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ आज़ादी मिलने की बजाय उनको और ज़्यादा शिकंजों में चकरा जा रहा है और ज्यादा मफकूद किया जा रहा है। सो ये एक हमारी एक जो यहाँ सिमत है वो रिवर्स है बाकी दुनिया की सिमत से। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो मेरा यकीन जो है वो ये कहता है कि ये लास्ट नहीं कर सकता, वो जितना मर्जी कर ले शिकंजों को, लेकिन ये शिकंजे जो हैं ये टूटेंगे, ये जंजीरें टूटेंगी और लोग बोलेंगे। इसीलिए आज तक इलेक्शन नहीं करवाए गए और अभी भी इलेक्शंस का होना जो है वो कम से कम जहां तक मेरा सवाल है मैं फील करता हूं कि अभी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इलेक्शन उस वक्त तक होंगे जब तक इनको यकीन कामिल नहीं हो जाता कि अब खान जो है वो हिस्ट्री है, पोलिटिकल हिस्ट्री है। तो वो मुझे होती नजर नहीं आ रही है, ना वो पोलिटिकली इलिमिनेट हुआ है, न्यूट्रलाइज हुआ इस मुल्क से, और ना ही उसने इस मुल्क को छोड़ के जाना है। सो वो एक ऐसी हकीकत है जो वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ज्यादा विजिबल है। कंसिक्वेंटली जो इलेक्शंस का प्रॉस्पेक्ट है, अनलेस ऑफकोर्स बिल्कुल ही झरलू इलेक्शन ये करवाएं, वो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो एक बहुत बड़ा फसाद बनेगा, नेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत बड़ा फसाद करेगा। सो इलेक्शंस का होना अभी तक मुझे नहीं यकीन कि जी इलेक्शंस इनकी सो कॉल्ड अनाउंस्ड डेट, जो डेट तो नहीं है, अनाउंस्ड वीक जो है जनवरी का आखिरी हफ्ता, उसमें हो जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ हो रहा है जो कानून के दायरे से बाहर है, बियॉन्ड द पेल ऑफ लॉ है, जो बियॉन्ड द पेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बियॉन्ड द पेल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जो कि जिससे ये मुल्क चलता है, वो सब कुछ हो रहा है और ब्लेटेंटली हो रहा है। वो बांगे दुहल कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, हमारे ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता, हमारे ऊपर कुछ लागू नहीं होते हैं, हम वी आर द लॉ ऑन टू आवर सेल्फ, हम खुद डिक्टेट करेंगे कि क्या लॉ है, हम बताएंगे आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो ये तो वो जमाना है कारीना के क्या होता था, शायद आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बेसिकली उसकी याद दिलाता है, वो इंटीक्विटी की याद दिलाता है, हमें उस तरह स्टोन एज की तरफ वापस लेके जा रहे हैं। ये तो दुनिया तो आगे बढ़ रही है और हम जो है वो वापसी का सफर हमने शुरू किया हुआ है।
सर पॉसिबल ही नहीं है, मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में भी यही कहा था कि आप स्टोन एज की बात करते हैं, आज दिस इज 21st सेंचुरी और इसमें आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली मुलाकात होती होगी बाज आला हुकाम से भी, क्या आप ये तस्वीर उनको दिखाते हैं, डोंट दे रियलाइज कि व्हाट एज दे आर गोइंग इन, दिस इज 21st सेंचुरी, क्या इनको एहसास नहीं है इस बात का कि इस नौजवान नस्ल को तो बड़ी खौफनाक बात होगी।
मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी किसी से मुलाकात होती है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है, आपकी हाथों में पकड़ी होती है, आपने फोन आपके हाथ में है और आपको इन वन विद वन पुश अप बटन नो यू कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू एक्सेस। सो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन सबको मौजूद है, लेकिन वो सब अपनी मजबूरी का इजहार करते हैं। और मैं उनको कहता हूँ, दिखता भी हूँ, कहता भी हूँ कि देयर कम्स अ टाइम व्हेन साइलेंस बिकम्स most formidable crime. I think अब वो हम उस फेज में पहुंचे हुए हैं जहां की खामोशी जो है वो सबसे बड़ा जुर्म बन चुकी हुई है। अगर ये मुझे बहुत काम ये बोलेगी नहीं, हम बार बार मैं कहता हूँ, जब भी बोलने की बात करता हूँ तो मैं पीसफुल एहतजाज की बात कर रहा हूँ, इंतहाई पीसफुल एहतजाज की बात करता हूँ, लेकिन ये राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, हम बोलें, हम अपने राइट्स को मांगें। तो आज हम उस फेज में हैं, मैं रिपीट करता हूं, जबकि खामोशी जो है, हमारी खामोशी, आवाम की खामोशी, लोगों की खामोशी जो है वो उनका सबसे बड़ा जुर्म बनेगी और इसका शाख्साना जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा इन टाइम्स टू कम।
इंशाल्लाह सर, गजा की बात होती है, पैलेस्टाइन की बात होती है, तो हम कहते हैं कि जी औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, विमेन राइट्स वालों को कॉल किया जा रहा है कि भाई कहाँ आप, कहाँ वो फेमिनिस्ट, कहाँ खामोश हैं आप। इस वक्त कोई चीज खोल लें, आपको फर्स्ट न्यूज जो या जो एडवर्टाइजमेंट मिलती है वो कि इसराइल के ऊपर जुल्म हो रहा है, मगर ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं, तभी आपने वो जो उसमें जिन रैट्स का जिक्र किया, वो बेचारे भी उनमें से बास तो इतने मजबूर हैं कि उन्होंने शील्ड बनाया उनके अगेंस्ट, उनकी बेटियों को, उनकी बीवियों को, या ये जो नंगी वीडियोज का एक रिवाज चल गया। तो आई डोंट नो क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे हैं। मैं कल जरदारी साहब का भी बयान था, पीपल्स पार्टी, नॉट जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का भी बयान था कि मियां साहब 21 तारीख को आ रहे हैं पाकिस्तान में, और एक शख्स जिसने $50 का स्टाम्प दिया था उसको 16 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर रखा गया, हालांकि जो बेल देने वाला है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर जिसकी उसने बेल दी होती है वो वहां मौजूद ना हो तो उसके लिए वो सजा हो जाती है। यानी इस कौम को बेवकूफ बनाने वाले कोई कम लोग नहीं है। और अब जब बड़े मियां साहब यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लेके आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि पहले वो जलसा करेंगे और उसके बाद फिर वो अपने जाती उमरा पहुंचेंगे और फिर कोई बाकी, यानी ये सारा कुछ प्लान्ड है। तो मतलब क्या वो ये समझते हैं कि इस कौम को तालीम भी नहीं दिलवाई, इसको पसमानदा रखने की कोशिश की जाती है, भूख और नंग इनको दिया जा रहा है, तो उन ब्रेन्स को ही अपने लिहाज से फीड करना चाहते हैं?
देखिए अरफा, जो बेसिकली जो अप्रोच है यहाँ और हमेशा से रही है वो यही रही है कि जो आपका गरीब है उसको और गरीब किया जाए, और जो अमीर है वो तो ऑब्वियसली और अमीर होते जा रहे हैं। ये बड़ी एक फ्यूडल अप्रोच है और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, बहुत बहुत जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा मैंने देखा हुआ है, हमारे जानने वाले भी लोग हैं, मतलब जब व्हेन यू ग्रो अप यू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल। ये खासकर पंजाब में जो माइंडसेट पलता है वो ये है कि जी जो आपसे गरीब है उसकी गर्दन के ऊपर पांव जो है रखें और दबाते जाएं उसको, बेशक वो मर जाए, और जो आपसे ऊंचा है, ताकतवर है, उसके आगे आप दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और अपनी दुम जो है वो हलानी शुरू कर दें। ये पंजाब की फ्यूडल कल्चर जो है ये उसकी कोर है। और आज पंजाब में जो
सिंध का भी, पंजाब एंड सिंध की
आपकी सिंध का भी, मोस्ट ऑफ सिंध भी यही कल्चर है बेसिकली। तो आवाम में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी बेसिस के ऊपर आप देखिए कि जो बेसिक चीजें हैं वो तालीम होती है, सेहत होती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, सोशल वेलफेयर होता है। आप देखिए कि अगर आप पर कैपिटा अगर आप कैलकुलेट करें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है स्टेट की, रियासत की, इन चीजों में वो कम होती गई है वक्त के साथ साथ, बड़ी नहीं है। कंसिक्वेंटली मैं कहता हूं कि जिस वक्त इस मुल्क में एक किस्म की स्टंटेड ग्रोथ भी आ चुकी हुई है, कुछ हिस्सों में तो बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, लेकिन वो मतलब इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं है कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली यू नो सब लोग पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हैं और वहां जाके अपना अपना वोट देंगे। लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा, और जो हमने जिस तरीके से इस मुल्क को 76 साल तक चलाया है, अब ये तरीका जो है ये खत्म हो चुका हुआ है, अपनी सांसें, आखिरी सांसें भी ले चुका हुआ है, इट्स डेड एंड you know, you just have to bury it basically. وہ جو آخری رائٹس ہیں اس کی وہ پرفارم کرنے والی ہیں, اور اس آخری رائٹس کو پرفارم کرنے کے خلاف جو ذہن ہے اس ملک کے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس سسٹم کے ذریعے ہم ایکسپلوائٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ اس سسٹم کے ذریعے ہم برسر اقتدار رہ سکتے ہیں, کیونکہ اس سسٹم کے ذریعے ہم اپنے جو بینیفٹس ہیں ان کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں, ہم حرام کما سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. کنسیکوئنٹلی بہت ڈائی ہارڈ قسم کی ریلکٹنس ہے کہ جی اس سسٹم کو وہ ختم کریں. سو یہ, لیکن یہ سسٹم اپنی آخری سانسیں میں کہتا ہوں وہ لے چکا ہوا ہے, ایک لاش کے طور کے اوپر ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, لیکن ہم اس کی بیریل رائٹس جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ وقت آئے گا, بہت جلدی آئے گا, ان قریب آئے گا, جبکہ یہ سسٹم جو ہے ریفارم بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ سسٹم جو ہے اس کو آپ نئے سرے سے رائٹ کرنا پڑے گا, اس کو ری رائٹ کرنا پڑے گا, اور اس میں فنڈامنٹل چینجز جو ہے وہ لانی پڑیں گی, ایک نئی سوچ جو ہے اس کو اجاگر کرنی پڑے گی, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ آپ کو اسکرپٹ کرنا پڑے گا, آپ کو جو سب سے پسی ہوئی خلقت ہے یہاں اس ملک میں وہ ان کو آپ کو اوپر لانا پڑے گا, آپ کو ان کے ذہنوں سے سوچنا ہوگا, ان کے ذہنوں سے آپ کو کام کرنا ہوگا, آپ کو اپنی ساری پاپولیشن کو اپلفٹ کرنا ہوگا, نکالنا ہوگا اس اندھیر نگری سے, تاکہ وہ ان کا جو پریزنٹ ہے, جو ان کا آج ہے وہ سہل ہو سکے, اور ان کا جو مستقبل ہے اس میں امید کی کرن جو ہے وہ اجاگر ہو سکے. دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیے, پچھلے ایک سال میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس ملک سے جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے گئے ہیں, 1 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں ایڈیشنلی جو تھے ان کے ساتھ, اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایکسڈس ہے آف برینز فرام پاکستان وہ ایک الارمنگ لمٹ تک پہنچ چکا ہوا ہے. اور میں نے ابھی کچھ ایک اور آرٹیکل لکھا تھا, اس میں میں نے کہا تھا کہ ابھی تو اب تو ہم صرف کشکول لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا پیسے مانگنے کے لیے, ان قریب وہ وقت آنے والا ہے اگر یہ ایکسڈس جاری رہا کہ ہم ایک اور کشکول ہمارے ہاتھ میں ہوگا, ایک کشکول میں ہم پیسے مانگیں گے, دوسرے کشکول میں ہم کہیں گے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی دے دیجئے جو کہ ہمارے ملک کو چلا سکیں, کیونکہ ہمارے پاس لوگ نہیں رہیں گے اس ملک میں جو اس کو چلا سکیں, جن میں اتنی کیپبلٹی اینڈ کیپیسٹی ہوگی, وہ سب لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کا یہاں جینا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے, ان کے مستقبل سے آپ نے امید کی آخری کرن تک چھین لی ہے. اور کوئی بچہ جو ہے ہمارے گھروں کا بچہ, ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بابا آپ کیوں بلاتے ہیں ہمیں واپس, کیا کریں گے ہم آگے.
بالکل صحیح سر.
تو یہ میں ایک آپ کو سین انیکٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے, یہ کوئی فکشن نہیں میں بول رہا, یہ حقیقت.
سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر جھوٹ اتنا زیادہ ہے. اب الیکشن اگر ہوتے بھی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اول تو الیکشن ہوں گے نہیں, اور اگر ہوں گے ہی ہوں گے تو کوئی بھی پارٹی کو یہ اختیار نہیں دیں گے. دس از ویری سیڈ. آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں فیض احمد فیض, میں آج کے دور کو دیکھتی ہوں, اب تو خیر انتہا ہو گئی اور اب جھوٹ بولا نہیں جا سکتا, اب آپ جھوٹ کو چھپا نہیں سکتے, اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو ڈیفینیٹ اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر آپ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں, تو یقیناً آپ کو ملک میں ایکچوئل ڈیموکریسی لے کے آنا ہوگی. میں فیض احمد فیض صاحب کا دور دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے بڑی خوبصورت پوئمز لکھی جس میں رومانس کا ذکر ہوا کرتا ہوتا تھا, مگر پھر جب ان کی آنکھیں کھلی اور حقیقت کو دیکھنا شروع کیا تو چاہے وہ فلسطین کی بات ہے, چاہے وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے, آپ نے سر کمال کی پوئمز لکھی. ہندوستان آج جب ان پوئمز کو, جیسے وہ ان کی ایک پوئم ہے ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, جب ہندوستان والوں نے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا تھا, ایگزیکٹلی سیم سینیریو از گوئنگ آن ان پاکستان. تو بس اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے. کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اول تو الیکشن ہوتے نہیں, اگر ہوتے ہیں تو وٹ ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی, آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول ایکسیپٹ کہ میاں صاحب اب